ओए चमक छल्लो, यहां अकेले क्या कर रही हो? अन्वे छत पर अकेली खड़ी अंतरा के पास आकर खड़ा हुआ। अंतरा ने नजर घुमाकर उसे देखा, फिर निगाहें वापस सामने ली ओर घुमाते हुए भावहीन सी बोली, कुछ नहीं। उदास हो? अन्वे के सवाल पर अंतरा ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए इनकार में सर हिला दिया, नहीं। तो नाराज हो मुझसे? अन्वय ने गहरी निगाहों से उसके चेहरे को देखा, जिस पर अजीब सी उदासी झलक रही थी। अन्वय का ये सवाल सुनकर अंतरा चौंकते हुए पलटकर उसे देखने लगी, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? तुम्हारी प्यारी जीजी को अपने साथ ले जाने आया हूं, और इस बार कुछ दिनों के लिए नहीं, महीनों के लिए। अब वो ज्यादा वक्त हमारे पास रहेंगी, और तुम्हें अपनी जीजी से मिलने के लिए महीनों महीनों उनके यहां आने का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। जीजी की जब शादी हुई तभी ये निश्चित हो गया था कि अब वो तुम्हारे घर में ज्यादा वक्त रहेंगी और हमें उनसे दूर रहना होगा। इसके लिए मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? अपने शरारती नेचर से उलट अंतरा आज बेहद संजीदा लग रही थी। फिर भी तुम्हें दुख तो हो रहा होगा? हो भी रहा है तो क्या करूं? जीजी को हमेशा के लिए अपने पास रोककर तो नहीं रख सकती, जाना तो उन्हें होगा ही। बेबसी और दर्द भरी मुस्कान उसके लबों पर आ ठहरी। अन्वय भी मजबूर था, इस मामले में कुछ कर नहीं सकता था। अंतरा को उदास देखकर उसने बात का रुख बदला, अंतरा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम दिल्ली कब आ रही हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें दिल्ली घुमाने के लिए। कभी नहीं, अंतरा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए सर झटकते हुए इनकार कर दिया, मानो दिल्ली जाने का ख्याल ही झटक रही हो। उसका जवाब और ये रिएक्शन देखकर अन्वय चौंक गया और फटी आंखों से उसे देखते हुए हैरानगी से सवाल किया, क्यों? उसके सवाल पर अंतरा तुनकते हुए बोल पड़ी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझे कभी दिल्ली जाने नहीं देंगे। तुम्हें पता है मेरी दोस्त की कजिन सिस्टर की शादी है, वो लोग दिल्ली में रहते हैं और शादी भी वहां है। उन्होंने मुझे खास फोन करके दिल्ली बुलाया ताकि मैं उन्हें उनकी शादी के दिन तैयार कर सकूं। इतने अच्छे पैसे भी ऑफर कर रहे थे, इतना अच्छा मौका था अपना काम बढ़ाने का। मैंने सोचा था दिल्ली जाऊंगी और अगर कामयाब रही तो ऑनलाइन ऑर्डर लेने शुरू कर दूंगी, धीरे धीरे काम जम जाएगा और मेरा करियर सेट हो जाएगा। पर मम्मी पापा ने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा जो करना है यहां रहकर करो, कोई दिल्ली विल्ली नहीं जाना है। भैया ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मना करने पर मेरी दोस्त भी मुझसे नाराज हो गई। अब तुम बताओ, जो बात दिल्ली में है वो यहाँ कानपुर में है? अंतरा ने नाराजगी से मुंह फुलाते हुए अन्वय से सवाल किया। अब जाकर अन्वय को उसके खराब मूड की वजह पता चली। उसकी पूरी बात सुनने के बाद उसने गंभीरता से कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, पर अंकल आंटी भी तो अपनी जगह गलत नहीं है। उन्हें फिक्र है तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। तो एक बार तो जाने के थे, काम खत्म करके लौट आती ना मैं, अंतरा ने बेचारी सी कहा और अपने दोनों गालों को फुलाए मायूस निगाहों से उसे देखने लगी। इस बारे में तुमने भाभी से बात की? अन्वय ने सवाल किया और जवाब के तौर पर उसके चेहरे की मायूसी और ज्यादा गहरी हुई। उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया, कहती है अनजान शहर है और अनजान लोग और मैं एक लड़की, मेरा वहां जाना ठीक नहीं। बात तो आहाना की भी ठीक थी। अन्वय ने कुछ पल इस पूरी स्थिति के बारे में गंभीरता से सोचा, फिर उसके उदास चेहरे को देखते हुए बोला, अच्छा तुम उदास तो मत हो और अपना दिल छोटा मत करो। एक बार दिल्ली चला जाऊं फिर मैं भाभी और भाई दोनों से बात कर लूंगा, तुम्हारी जिम्मेदारी भी मैं लूंगा, फिर तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर भाई कहेंगे तो अंकल आंटी भी मान जाएंगे, फिर तुम दिल्ली आकर अपना काम भी कर लेना और उसके बाद मैं तुम्हें पूरी दिल्ली घुमाऊंगा। चलो अब तो ये उदासी छोड़कर मुस्कुरा दो, एक शर्त पर, पहले तुम वादा करो कि दिल्ली में जीजी का ख्याल रखोगे, अंतरा ने संजीदगी से कहा और बड़ी ही उम्मीद से उसे देखने लगी। उसकी बात सुनकर अन्वय मुस्कुरा दिया, ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर तुमसे वादा करता हूँ कि एक देवर के तौर पर मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं भी मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ, एक लिमिट तक ही कोशिश कर सकता हूँ। पर तुम परेशान मत हो, भाई है ना, वो भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। अंतरा ने सर हिलाया और दोनों नीचे चले आए। कमरे में आहाना अपने बैग्स पैक करके रख रही थी जब अंतरा संग अन्वय वहां पहुंच गया। भाभी हो गई सारी पैकिंग? आवाज़ सुनकर आहाना उसकी ओर पलटी और सर हिला दिया, जी बस अभी पूरी हुई है, दो तीन बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, इस बार इतनी जल्दी वापसी नहीं होगी। अन्वय ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, पर आहाना के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई थी। आखिर अपने घर परिवार से दूर जाने का दुख तो होना ही था, पर उसने अपनी उदासी को परे झटक दिया और उलझन भरी नजरों से उसे देखते हुए बोली, अन्वय हम आपके भैया को बता दें कि हम आ रहे हैं? उसके ये सवाल पूछने की देर थी कि अन्वय ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाया, नहीं भाभी, भैया को कुछ मत बताइएगा, सरप्राइज दीजिएगा उन्हें, देखिएगा जब उन्हें पता चलेगा कि अब आप वहीं रहेंगी उनके साथ तो खुशी से बावले हो जाएंगे वो। अगर उन्हें घर पर किसी ने बता दिया तो बुरा लगेगा कि हमने उनसे ये बात छुपाई। आहाना ने अपनी परेशानी की वजह उसके सामने रख दी, जिस पर अन्वय ने बेफिक्री भरी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, उसकी चिंता आप मत कीजिए भाभी, मैंने घर पर सबको समझा दिया है और फलक से बात हो गई है, कोई भैया को कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए आप बेफिक्र रहिए और बस इंतजार कीजिए भैया का रिएक्शन देखने का, जब उन्हें जोर का झटका जोरों से लगेगा। शरारती अन्वय यहाँ भी अपने नटखट अंदाज दिखाने से बाज ना आया और आहाना को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। पूरे परिवार ने आज की रात एक साथ बिताई। आहाना काफी देर तक जयेश जी की गोद में सर रखकर लेटी रही और उसके माता पिता उसके सर पर अपना प्यार भरा हाथ फेरते रहे। दृशांत, पल्लवी, अंतरा, निशांत सबने खूब बातें, हंसी मजाक और मौज मस्ती की। जाने ऐसा मौका फिर कब उनके नसीब में आए। अन्वय भी उन सब में शामिल था और बस इस परिवार को देखकर अपने परिवार से उनकी तुलना कर रहा था। कितने साधारण से लोग थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनकी खुशियां और गम एक दूसरे से जुड़े हैं। सही मायनों में ये एक आदर्श परिवार है जहां सबकी खुशियों को महत्व दिया जाता है, सब बराबर हैं, सबको अपने हिस्से की आज़ादी मिली है। प्यार तो वो भी बहुत करते हैं एक दूसरे से, पर उनके परिवार में रूपाली जी का दबदबा है, सिर्फ उनकी चलती है। उनके लिए वो एक परिवार नहीं, रियासत है, और वो उस रियासत की तानाशाह शासक जो सबको अपने नीचे दबा कर रखना चाहती है। खैर, आज की रात बहुत जल्दी बीत गई थी। सुबह के नाश्ते के बाद वो वक्त भी आ गया जब आहाना को अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाना था। शुक्ला निवास का माहौल गमगीन था और हर शख्स उदास, सब बस किसी तरह अपने आंसुओं को बाहर आने से रोकने की कोशिशों में लगे थे। अंतरा, हम जा रहे हैं, अब शरारतें कम करना, माँ को ज्यादा परेशान मत करना और काम में उनकी मदद करना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पल्लवी पर सब मत छोड़ देना। जाने से पहले आहाना अंतरा को ये सब समझा रही थी। उसकी बातें सुनकर अंतरा का मन भर आया। उसने नम आंखों से उसे देखते हुए सहमति में सर हिलाया और उसके गले से लग गई। आहाना भी कुछ भावुक हो गई थी, पर उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। अगर उसकी आंखें आज पसीज जाती तो उसका पूरा परिवार आंसुओं के सैलाब में बह जाता। जी जी, आप कब वापस आएंगी हमारे पास? निशांत ने भीगे स्वर में उसे सवाल किया। आहाना ने अंतरा को खुद से अलग किया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जल्दी आएंगी, तुम भैया की बात मानना, दोस्तों के साथ बाहर मटर गश्ती मत करना, पढ़ाई पर ध्यान देना।
मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा तो आप जल्दी वापस आ जाएंगी? बच्चों जैसे उसने आहाना से सवाल किया, जिसे सुनकर दर्द भरी मुस्कान आहाना के लबों पर बिखर गई और उसने सहमति में सर हिलाते हुए उसके सर को चूम लिया। अपना ख्याल रखना गुड़िया, और याद रखना कि तेरा भाई, तेरा पूरा परिवार हमेशा तेरे साथ है और इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। हाँ, और दिल्ली जाकर मुझे भूल मत जाना, फोन पर सब खबर रखूंगी मैं, और खबरदार जो तूने मुझसे कभी कुछ छुपाया, इन दूरियों और बदलते रिश्तों का हमारी दोस्ती पर कोई असर नहीं होना चाहिए। दृशांत ने अपनी छोटी बहन को प्यार से समझाया, वहीं पल्लवी ने दोस्त की हैसियत से उसे धमकाया और आहाना मुस्कुराकर दोनों के गले से लग गई। जयेश जी के पैर छूने गई तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे वे, और न ही उन बाप बेटी के रिश्ते में शब्दों की जरूरत थी। उनका प्यार भरा हाथ आहाना के सर पर था और यही उसकी कुल कायनात थी। जयंती जी ने जब अपनी लाडली को अपने सीने से लगाया तो उनकी आंखें भीग गईं। असली विदाई तो उसकी अब हुई थी। अब तक कितनी ही बार उसका दिल्ली आना जाना हुआ था, पर तब वो और बाकी सब जानते थे कि हफ्ते 10 दिन में उसे वापस लौटना ही है, पर अब की बार जाते हुए वो नहीं जानती थी कि कब लौटेगी। अब सही मायनों में उसका गृहस्थ जीवन शुरू होने वाला था। आहाना दुल कड़ा करके आज बिना आंखों से नीर बहाए अपने मायके की दहलीज पार करते हुए ससुराल चलती थी, और शुक्ला निवास के सदस्य भारी मन से दहलीज पर खड़े दूर जाती गाड़ी को नम आंखों से देखते रहे थे। आहाना के साथ तो अन्वय था, एक नंबर का नौटंकीबाज, शैतान और बातूनी लड़का। उसकी खट्टी मीठी दिलचस्प बातों ने पल भर के लिए भी आहाना को उदास नहीं होने दिया, और दिल में अक्षय से मिलन की ख्वाहिश लिए वो चल पड़ी थी उन रास्तों पर जो उसे अक्षय तक पहुंचाते थे। रात के करीब 9 बजे अक्षय घर पहुंचा। हॉल में बैठी फलक को देखकर पहले तो वो चौंक गया, फिर जब फलक भाई पुकारते हुए उसके सीने से लगी तो उसने खुशी से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कैसी है? बड़े ही प्यार से और परवाह भरे अंदाज में उसने ये सवाल किया, और जवाब में वो खुलकर मुस्कुरा दी। उसे खुश देखकर अक्षय भी निश्चिंत हो गया। भाई, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाइए, हम सब डिनर के लिए कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, भूख से पेट में चूहे भांगड़ा करने लगे हैं, अगर अभी भी उन्हें खाना नहीं मिला तो बेचारे भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देंगे, सोफे पर पसरे अन्वय ने पापड़ चबाते हुए कहा। बैठे बैठे ठूस भी रहा था और भूख की दुहाई भी दे रहा था। उसकी नौटंकी देखकर अक्षय ने बेबसी और अफसोस से सर हिलाया और जल्दी आने का बोलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही फलक और अन्वय ने तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखा और लबों पर शैतानी मुस्कान बिखर गई। अक्षय ने दरवाजा खोलते हुए कमरे में कदम रखा और ठीक उसी वक्त किसी की बेचैन चूड़ियों और पायलों की मधुर धुन छेड़ी, जिसने अक्षय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। और करता भी क्यों नहीं, आखिर इस कमरे में दिल जलाने वाले सन्नाटे की आदत जो हो गई थी उसे, तन्हाई में अपने बेचैन धड़कनों के शोर को सुनकर अकेले अपनी लातें काटा करता था। उसके सोने वीरान इस कमरे में आज किसी के होने का एहसास उसकी धड़कनों को अनजाने तौर पर बढ़ा गया था। अक्षय ने चौंकते हुए आवाज की दिशा में नजरें दौड़ाई और निगाहें उसकी ओर बढ़ती आहाना पर जा ठहरी। आहाना को अचानक अपने सामने देखकर पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फटी आंखों से वो कुछ पल स्तब्ध सा उसे देखता रहा, कई बार अपनी पलकों को झपकाया, पर हर बार आंखों के सामने आहाना का ही चेहरा आया। तब कहीं जाकर उसे हकीकत और ख्वाब में फर्क समझ आया और उसके सीने में मौजूद दिल की बढ़ी धड़कनों ने उसे सच्चाई की पुष्टि कर दी। आप कब आई? अक्षय ने हैरानगी से सवाल किया। चौंकना तो बनता था, आखिर बिना किसी खबर के वो अचानक उसके सामने जो आ खड़ी हुई थी। कमिंग सून। अक्षय और आहाना की इस मुलाकात को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ।